समय सार लेक्चर नंबर 762 ओम नमः सिद्धे समय सार है और इस समय सार के हम गाथा 273 से 382 तक के गाथाओं के बाद यहाँ जो कलश है कलश नंबर 223 कलश नंबर 223 के हम बात देख रहे हैं। वहाँ कल हमने बात देखी थी कि ज्ञान चेतना कर्म चेतना और कर्मफल चेतना इसकी बात चल रही थी और वहाँ पर भी दो मत है वो हमने देखे थे। यहाँ तो एक ऐसा है कि जिनेन्द्र भगवान यानी अरहंत अवस्था में परिपूर्ण ज्ञान चेतना होती है और जो चतुर्थ गुणस्थान से लेकर आगे वाले जो जीव हैं उनके एक अपेक्षा ऐसी है कि उनके जितने अंश में राग द्वेष है उतने अन्य में कर्म और कर्मफल चेतना है और कोई ऐसा भी यानी एक अपेक्षा यह भी बताते हैं कि उनके भी ज्ञान चेतना ही है कर्म चेतना और कर्मफल चेतना नहीं है क्योंकि राग में और उसके फल में उनको स्वामित्व नहीं है। ये दोनों ही बात ध्यान में रखते हुए हम देखते आए हैं। अभी पृष्ठ क्रमांक 69 पर हम आए हैं। ये नीचे से दूसरा पैराग्राफ है ना उसको हम देखेंगे। यहाँ देख रहे बता रहे ज्ञान चेतना न उपयोगात्मक पनाने मुख्य न करिए तो यानी क्या कहा कि ये ज्ञान चेतना कब कही जाएगी कि जब आत्मा अपने स्वरूप में एकाग्र होगा उसका उपयोग सो में लगा होगा उसको गौण करेंगे तो ये करते हैं। मुख्य न करिए तो सम्यक दृष्टि ने ज्ञान चेतना निरंतर होय छे। एटले शुं के सम्यक दृष्टि ने लब्ध रूप ज्ञान चेतना सदाय रहे छे। ये लब्ध रूप और उपयोग रूप इसका बराबर हमें ख्याल है ना। लब्ध किसको कहना और उपयोग किसको कहना कौन बताना चाहेगा आप बताएंगे। हाँ हाँ कोई बात नहीं। मैंने इसलिए पूछा कि इसका अर्थ जब तक हम नहीं यथार्थतया जानेंगे तो यहाँ जो स्वामी जी जो बात बताना चाहते हैं ऑफ कोर्स ये जो कलश में जो बात है वो हमारे ज्ञान में नहीं उतरेगी। बापा आप बता पाएंगे नहीं मालूम कोई बात नहीं। क्या नाम दिव्या बेन। लब्ध का अर्थ आपने प्राप्ति किए बहुत अच्छा। हाँ जया बेन आप बताएंगे। हाँ वो कौन सा? अच्छा व्यापार रूप में है वो लब्ध और नहीं है। हाँ और अच्छा अच्छा हाँ आप कुछ कहना चाहते हैं? हाथ तो उठाया आपने, देखो देखो अभी। हाँ बहुत अच्छा, ये डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं वो मैं उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊंगा। हाँ अभी देखो आपको मैं पूछूंगा, ओ क्या नाम, रश्मि बेन, आपको गुजराती भाषा आती है, हिंदी, अंग्रेजी आती है, कच्ची आती है, चार भाषा और बाकी की भी आती होंगी, मराठी वगैरह जाने दो ना। तो अभी हम हिंदी में बोल रहे हैं तो आपका कच्ची का ज्ञान निकल गया कि नहीं? वो लब्ध रूप से पढ़ा है। अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, शास्त्र का अभ्यास कर रहे हैं, शास्त्र ज्ञान कर रहे हैं, तो आपका रसोई का ज्ञान है क्या निकल गया? आप मोटर चलाती है तो मोटर चलाने का ज्ञान उड़ गया कि नहीं? वो है, लब्ध रूप से पढ़ा है। यानी जो एकेंद्रिय होगा उसका ज्ञान और जो पंचेंद्रिय होगा उसका ज्ञान, वह अधिक ज्ञान है, वो लब्ध, उसकी कैपेसिटी उतनी है, लेकिन उसमें से कुछ हम जिस उपयोग में लगा रहे, जैसे स्कूल के बच्चे हैं मैथ्स का अभ्यास कर रहे हैं तो उसको भूगोल का भी ज्ञान है, इतिहास का भी ज्ञान है, अन्य भाषाओं अन्य विषयों का भी ज्ञान है। अभी हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि मोटर चलाने को जानते हैं लेकिन अभी यहाँ बैठे बैठे कहाँ मोटर चला रहे, यहाँ तो स्वाध्याय कर रहे, तो उनका वो ज्ञान है क्या नहीं? हाँ लब्ध रूप से है। ख्याल में लब्ध यानी आपने प्राप्ति बताया, किसने बताया आपने? तो प्राप्ति यानी हमारा ज्ञान का उघाड़ कितना है वो लब्ध रूप से है। संगी पंचेंद्रिय को इन कंपैरिजन चार इंद्रिय असंगी तक के जीवन से अधिक ज्ञान का उघाड़ है। उसमें भी और वेरिएशंस बहुत है, संगी पंचेंद्रियों में भी कम अधिक उघाड़ हो सकता है। ख्याल में है ना? अब क्या कह रहे देखो, ज्ञान, फिर से पढ़ रहा हूं मैं, ज्ञान चेतना ना उपयोगात्मक पनाने मुख्य न करिए तो, यानी हमने क्या देखा था कि जब आत्मा अपने स्वरूप का अनुभवन कर रहा है, ज्ञान चेतना यानी ज्ञान रूप से अपने को अनुभव कर रहा है, अपना उपयोग उसी में लगा है, इसको हम गौण करें तो सम्यक दृष्टि ने ज्ञान चेतना निरंतर होइ छे, ये एक बात उन्होंने एस्टेब्लिश की। अब कहते हैं इसका अर्थ क्या, इटले शू के सम्यक दृष्टि ने लब्ध रूप ज्ञान चेतना सदाय रहे छे, यानी उनका हम अभी अपनी भाषा में समझना चाहे तो शुद्ध परिणति उनकी चालू है, शुद्ध उपयोग में नहीं है। कौन? ये चौथे पांचवें गुण स्थान वाले। अब मुनि अवस्था का जीव क्या हो गया, उनके तो फ्रीक्वेंसी जो है छठे से सातवें, सातवें से छठे, वो बहुत जल्दी जल्दी होती है, किसके साथ तुलना करें तो चौथे और पांचवें के साथ। तो इसलिए कहते हैं सम्यक दृष्टि ने लब्ध रूप ज्ञान चेतना, यानी वो आप मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूं, ये ज्ञान तो उनको निरंतर चालू ही रहता है। ज्ञान नो उपयोग स्वस्वरूपती खसी जता समकीति ने विकल्प आवे छे, यानी उनको राग द्वेष होते हैं, छताते जीव ने सम्यक दर्शन ज्ञान थयू छे, ज्ञान चेतना प्रकटि छे, ते तेने कायम रहे छे। कौन? ज्ञान चेतना कायम रहे छे, चाहे तो व्यापार धंधा मा उभो होय के अन्य विकल्प मा होय, हूँ ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा छू एवु भान, एवी श्रद्धा, एवु ज्ञान एने निरंतर रहे ज छे। देखो हमने बहुत बार गुरुदेव के मुख से ये बात सुनी है कि पांचवा गुणस्थान वर्ती जीव लड़ाई खेलता होवे तब भी उसको अपने स्वरूप की श्रद्धा में कोई खोट नहीं है, उस समय जान रहा है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। ख्याल में? अब वहां चारित्र गुण में कोई और विपरीत बात चल रही राग चल रहा है देश के प्रति कि मेरा देश को कोई तकलीफ नहीं करे, तो दूसरे को देश लूटने के लिए कभी लड़ाई में नहीं जाएगा। लेकिन अपने पर कोई आक्रमण करता है तो उसके प्रतिकार के लिए, रक्षा के लिए जरूर खेलेगा, ये फर्क रहेगा। तो क्या कहा नीचे से चौथी लाइन है, देखो, चाहे तो व्यापार धंधा में उभो हो के अन्य विकल्प में उभो हो। अभी हमने देखा ये भागचंद आदि जो बड़े बड़े कवि हो गए वे भी व्यापार करते थे। हा? ये हमने सुना था ना कि एक टोकरी में जो कुछ रहेगा बस जो है वो बेच दिया, फिर दुकान खोले नहीं, ऐसा उनका भी था व्यापार धंधा में वो जे चताए सम्यक दृष्टि से। अभी और क्या और की बात क्या करेंगे। स्वामी जी भी जब प्रवचन कर रहे थे तब तो ये उनके लिए वो व्यापार धंधा था। व्यापार धंधा यानी कोई पैसा का लेन देन नहीं, अन्य कोई कार्य हो रहा था। और बाकी तो जब ये अपने स्वरूप में लीन था तो उनकी होती होगी, ख्याल में है ना। ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा छू एवं भान, ये भान तेने निरंतर रहे छे, ते कदी विकल्प साथे तद्रूप थतो नथी। तद्रूप एटले एकमेक, तत्रूप उसका बना क्या, तद्रूप। अहो भगवान केवड़िया ने तेमना केड़ाई थी संतो, आवो अद्भुत वारसो मुकी गया छे। पन भाई तू नजर करे तो ने, बापा ये क्या बता रहे, सुनो कि हम तो मेरे बच्चे को मैं कितना लाख रख के जाता हूँ, कितना करोड़, कितना अबज, बोल दो उसकी चिंता मत कर, तो आवो वारसो मुख, क्या कह रहे हैं नलिन भाई, कह के अपने बच्चों को ये सिखा, ये उनको इसमें इंटरेस्ट जागृत कर, ये वारसा मुखी जा, ऐसा बोलते हैं। आपके मन में भी विचार चल रहे हैं मैं जानता हूँ, तुम दूसरे को तो बोलते हो, सुनो अरे भाई, अरे मुझे पूरा तो बोलने दो, आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, अभी तो जा गया नहीं हूँ, लेकिन मिली भाई हमारा ये है ना क्या साक्षी, वो यहाँ से वीडियो क्या सीडीज लेके जाता है कि नहीं, और लाता भी है, यानी हम यहाँ जो लेक्चर्स होते हैं ना डॉक्टर, और रीना को भेजते हैं, मोना को भेजते हैं, अभी मोना के लिए तो ये काम में नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ का अभी उसको दुकान खोल दे तो जाए। लेकिन सच कहता हूँ, हमें तो ऐसा लगता है कि मेरे तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी ने हमारे पर कितने अनंत उपकार किए, कुछ न कुछ बहाना लेके हमको लेके गए, जिंदगी पलट गए, ये तो कहाँ मरते। क्या कहा, केवड़िया ने तेमना केड़ाई थी संतो, आवो अद्भुत वारसो मुकी गया छे। समकीति ने कर्म चेतना ने कर्म प्रछल चेतना होती नथी, एटले शू तेने पुण्य पापना विकल्प अने हरक शोक नु वेदन होतुज नथी, एम नहीं। ख्याल में देखो दोनों बातें बताई। पन तेने कर्मना ने कर्मफलना स्वामित्वपने परिणमन नथी, तेने पुण्य पापना विकल्पो अने हरक शोकना वेदननु स्वामित्व नथी। इसका अर्थ क्या, उनको भी वहां वो दुख हो रहा है, वो पाप पुण्य जो के परिणाम है ना, वो तो दुख रूप है, आश्रव है। लेकिन वो जानते हैं कि भाई ये मेरी कमजोरी है, इसलिए ये मेरे में उत्पन्न हो रहे हैं। निरंतर ज्ञानना स्वामित्व भावेज ते प्रणम तो होय छे, ते तो पुण्य पाप आदि भावोनो मात्र ज्ञाताज रहे छे। पुण्य पाप आदि भावोनु परिणमन छे पन तेने एनु स्वामित्व नथी। तेथी दृष्टिनी प्रधानतामा ज्ञान चेतनानी मुख्यता करी। दृष्टि यानी यहाँ क्या, यहाँ श्रद्धा की अपेक्षा कहो कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसी ऐसा जो कोई उनका परिणमन हो रहा है उसकी मुख्यता यानी द्रव्य दृष्टि की मुख्यता, द्रव्य के स्वभाव की मुख्यता में हम जब देखते हैं मैं ज्ञान स्वरूप हूँ तो उसमें ज्ञान चेतना नहीं मुख्यता करी छे। कर्म चेतना ने कर्म फल चेतना ने गौण गणी ते एनामा नथी एम कहूं, यानी वो है नहीं है ऐसी बात नहीं है, तो उसको हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे ऐसा कह रहे। आहा हूं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान छू एम निज चैतन्य सत्ता नो जे अंदर स्वामी थयो ते भले बाहर मा बाहर राजपाट मा पड़ियो होय छता ज्ञान चेतना नो तेने निरंतर सद्भाव छे पूर्ण वितराग न थाय त्या सुधी तेने दया दान पूजा आदि नाने राजकाजना भाव आवे ते कर्म चेतना छे। छता ज्ञान चेतना ने मुख्य गणी कर्म चेतना ने गौण करी ते नथी एम कहेवामां आव्युं छे। समकीती ने पुण्य पाप नु परिणमन छे पण एनु स्वामित्व नथी। बाहर मां क्याय करता भोक्ता पनानी बुद्धि ज्ञानी करतो नथी आवी वात। अरे भाई चार गति ने चौरासी ना अवतार मां रजळी रजळी ने ते पारावार दुख भोगव्या छे, तारा दुख नी शू वात करिए। ए दुख ना जोनाराओ ने आंख मां आंसू आवी जाय एवा नरक निगोदना अकथ्य दुख ते मिथ्या श्रद्धान ना फळ मां भोगव्या छे। ए मिथ्या श्रद्धान छूटी ने सम्यक श्रद्धान थाय ए महा अलौकिक चीज छे। अने पांचमे छठे गुणस्थाने तो और कोई आनंद नी अलौकिक दशा प्रकट थाय छे। यानी देखो चौथे गुणस्थान से भी छठा गुणस्थान जो है पांचवा गुणस्थान है वो भी और वैल्यूएबल है, उसमें और अनंत अनंत मतलब अनेक आनंद की वहां लहरें उठती हैं ऐसा कहते हैं। ज्ञाता दृष्टा प्राणी सहज अद्भुत उदासीन अवस्था तेने प्रकट थई होई छे। ओहो एक एवी अंतर दशा। हवे कहे छे अतीत कर्म प्रत्ये ममत्व छोड़े ते आत्मा प्रतिक्रमण छे। आत्मा को ही प्रतिक्रमण कहा हो। अनागत कर्म न करवानी प्रतिज्ञा करे अर्थात ते भावो थी आगामी कर्म बंधाय ते भावो नु ममत्व छोड़े ते आत्मा प्रत्याख्यान छे। अने उदय मां आवेला वर्तमान कर्म नु ममत्व छोड़े ते आत्मा आलोचना छे। सदाय आवा प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान अने आलोचना पूर्वक वर्ततो आत्मा चारित्र छे। यहाँ एक बहुत अच्छी बात बताई, यहाँ तीनों ही अपेक्षा से आत्मा को ही प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना कह दिया, और इसके आगे का आत्मा ही चारित्र है। यहाँ एक बार कहते हैं आत्मा ही ज्ञान है हा? और यहाँ कह रहे हैं आत्मा ही चारित्र है। भाई जिसकी शादी होगी उसके गाना गाएंगे वैसे जहाँ जो विषय चलता हो उसकी मुख्यता करके ही बताएंगे। आवो चारित्रनु विधान हवेनी गाथाओं मां कहे छे, यानी आगे जो गाथा आने वाली है उसमें चारित्र की मुख्यता की बात होगी। जो भूतकाळना पुण्यपापना भावनु ममत्व छोड़े ते आत्मा प्रतिक्रमण छे। शू कीधुं दयादान आदि जे शुभ के अशुभ विकल्प छे। अभी यहां दयादान इसमें अशुभ विकल्प कौन सा आया? हाँ मिली भाई लिखा किधर है? देखो देखो मैं आप बताना चाहते हैं। हाँ हाँ देखो देखो क्या क्या लिखा है फिर से पढ़ते हैं हम। दया दान आदि आदि में सब दुनिया ले लेना। आपने जो बताया ना हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह फिर कर्तृत्व भाव मुक्त अमुक जो भी है आदि में डाल दिया। हाँ अभी क्या कह दिया दया दान आदि जे शुभ के अशुभ, ये आदि में सारा अशुभ को समाहित कर दिया। દયાદાન આદિ કે જે શુભ કે અશુભ વિકલ્પ છે તેનાથી પાછો ફરીને અંદર સ્વરૂપમાં ઠરી જાય તે આત્મા પ્રતિક્રમણ છે. હું તો એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા આત્મ રામ એમ અંતર એકાગ્ર થઈ સ્વરૂપમાં લીન થઈ રમણતા કરે તેને પ્રતિક્રમણ કહીએ છીએ. આહો, આવું એક સમયનું પ્રતિક્રમણ જન્મ મરણનું અંત કરનારું છે. અનંત અનંત ભૂતકાળ વીતી ગયો તેમાં જે પુણ્યપાપના ભાવ થયા તેના પ્રત્યેનું મમત્વ છોડે છે, છોડે કે તે ભાવ હું નહીં. હું તો જ્ઞાનાનંદ સહજાનંદ સ્વરૂપ, એ ન કે ઉપર અનુસ્વાર ચાહીએ, સહજાનંદ સ્વરૂપ પ્રભુ છું એમ જાણી તેમાં જ અંતરલીન રમે તેને ભગવાન જિનેન્દ્ર દેવે પ્રતિક્રમણ કહ્યું છે. દેખો હમ તો કિતના એસા બાત કરતે ના, અરે હમારે ઉધર તો ઇતના ઘર બડા થા, એસા થા અને વૈસા થા. હમ જ્યાં રહેતે થે શોલાપુર મેં, યે રૂમ હૈ ના ઇતના બડા તો હમારા બાથરૂમ થા, હા, અરે પૂરા પ્લોટ જો હોગા મતલબ એરિયા એસે ચાર તો બડે બડે હોલ થે. હમારા એસા થા, હમારા તો એસા થા, એ ભૂતકાલ મેં ઉસમે અભી મમત વો છૂટા નહીં, યે બતાના ચાહતે. હા, યે તો કહેતે પુરાની બાતોં કો તો ભૂલ ગયે, ઉસમે કોઈ અપનાપન નહીં રહા, ભવિષ્ય મેં એસા એસા કુછ હોગા, અરે બચકે રહેના, અરે બચકે રહેના નહીં તો સ્વરૂપ મેં રહેના, ખ્યાલ મેં પ્રતિક્રમણ વર્તમાન મેં ભી કહેતે સ્વરૂપ મેં હૈ તે આત્મા. એસી બાત બતાએ પ્રતિક્રમણ છે, પ્રત્યાખ્યાન.
પ્રતિક્રમણ કરેંગે દશલક્ષણ કી વાત કાહે કા કરેંગે, ક્યા ક્યા બોલતે માલુમ હૈ પ્રતિક્રમણ મેં ક્યા ક્યા બોલતે હૈ, વો મેરા સબ દુષ્કૃત મિથ્યા હો જા, દુષ્કૃતોં કી લિસ્ટ મેં કિસ કિસ કો લેતે હૈ નહીં માલુમ, મેં ચલ કર આયા જિતની હિંસા હુઈ મેને બુખારી કી જિતની હિંસા હુઈ હૈ ના, કભી સુના હૈ કે નહીં પ્રતિક્રમણ. તો ઉસમે ખાલી પાપોં કી લિસ્ટ હૈ, કોઈ પુણ્ય કા નહીં, મેને ઇતના. આપ કહેંગે ક્યા કહેતે હો, ઉસકો અગર હમ મિથ્યા કરેંગે તો હમારે હાથ મેં કુછ નહીં રહેગા હૈ ના, પુણ્ય કો તો સબ નહીં, દસ દિન હમને ઇતને વ્રત ઉપવાસ કિયે સ્વાધ્યાય કિયા વો મેરા મિથ્યા હો જાય એસા કોઈ નહીં કહેતા હૈ. યહાં તો પુણ્ય પાપ દોનોં કો લિયા, દોનોં કે પ્રત્યે મમત્વ ભાવ છોડને કો પ્રતિક્રમણ કહા હૈ. और हम ये प्रतिक्रमण नाम की कोई विधि है, सब लोग इकट्ठे आएंगे और फिर वो जोर जोर से बोलेंगे, बस हो गया प्रतिक्रमण. वो क्या बोलते कौन जाने, पहले तो वो फास्ट फास्ट बोलते थे ना और प्राकृत गाता, वो आज तक किसको समझता है.
हम अमेरिका में गए वहां तो ऐसा मान लो, अभी तो अपन यहाँ थोड़े लोग हैं, वहां तो मान लो 50-60 लोग बैठे ऐसे लाइन में बैठते हॉल में, और एक ने इतना पेडिका पढ़ लिया, फिर दूसरे ने इतना पढ़ लिया, फिर उसके बाजू ने पढ़ लिया, फिर एकाद ऐसा भी निकल आता है कि जिसको पढ़ने में, क्योंकि अंग्रेजी लोग हैं ना वहां जाने के बाद, तो गुजराती पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ने में तकलीफ होती है, तो बीच बीच में रुक जाते, क्या बोलते हैं उसको ही नहीं समझता है, फिर बाजू वाला उसको बताता है, ऐसी बातें चलती हैं. और थई गयो प्रतिक्रमण, अरे ये प्रतिक्रमण कौन करे, पहला ये तो नक्की करो.
और एक जगह तो वो 40 બાર વો તો કહેના ફટ 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 ક્યા બોલ દે, હા 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 લોગસ
એ 40 બાર બોલ દે, હા હા, ઓર વો જલ્દી જલ્દી હોવે ક્યોંકિ હમારે લેક્ચર સુનને કા રહેતા હૈ ના,
હા વો બોલને વાલે ભી સ્પેશિયલિસ્ટ હોતે હૈ, ફટ 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 સબ પૂરા બોલ જાય, હા
હા
હા, વો એક ઉનકા તો વિશિષ્ટ પાઠ કિતને બાર બોલના ઉનકે પૂરે વિધિ પ્રમાણે સબ હો જાતે હૈ, હા.
यानी ये केवल क्रिया रह गई है, उसका अर्थ तो हम समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि अर्थ समझने जाओ तो 2 घंटे लग जाए, ऐसा भी 1.5-1.5 घंटा बोलते हैं वो जो कुछ है आगे से पीछे तक. ચલો ચલો, કોઈ વાત નહીં ભાઈ, યે દેખો યે બાત હમકો બોલના અચ્છા લગતા હૈ, પણ હમ ઉનસે યે હમ સીખ લેવે કે હમારે સે યે તકલીફ નહીં હૈ ના, હમારે સે યે મિસ્ટેક નહીં હોતી હૈ ના, होती होगी तो निकाल दो, नहीं होती होगी तो बहुत अच्छी बात है। आप जो कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं,
अर्थ समझ कर कहना चाहिए।
हाँ।
कितना फास्ट या स्लो करने वाले नहीं करते और फास्ट करने वाले ऐसा नहीं है कोई, उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर भी यदि उसके शब्द मालूम है, अर्थ मालूम है, तो की बात है यहाँ पर।
अभी हम भी देखते हैं महाराष्ट्र में तो ऐसी पद्धति है कि कम से कम 5 पूजा तो बोलनी ही चाहिए। आपने कितनी की? 5? तो हमने 7 की। आपने 7 की? हमने 11 की। आपने 11 की? हम सुबह 5 बजे से बैठे 4 बजे तक। फिर वो क्या बोलते हैं और किस लिए बोलते हैं, इसी में मजा निकल जाती है। लेकिन वो अधिक बोलने से तो अधिक, आज 11 पूजा है तो पट पट बोलना पड़ता है, क्योंकि भूख तो लगेगी कि नहीं, ये सारी बातें होती है, भूल जाना उससे। हम इतनी बात देखे, भले एक पूजा क्यों ना बोलो आप, लेकिन इत्मीनान से अर्थ समझते हुए बोलो, ऐसा होना चाहिए। चलो आगे। ये तो क्या है, रोज रोज हम पूजा करेंगे तो उसका अर्थ समझेंगे, और अर्थ समझेंगे तो अर्थ सहित हमें समझने, समझ के साथ बोलने में भी मजा आएगा। इसके लिए रोज पूजा करना पड़ेगा। ओ मुझे याद है, मैंने बहुतों को बताया था कि आप कम से कम रोजाना घर में एक पूजा बोलना, कौन मालूम कितना कौन करते हैं। याद है, अभी आया मुझे। चलो ये नीचे से तीसरी चौथी लाइन, नहीं नीचे से चौथी लाइन पढ़ रहा हूँ। अनंत अनंत भूतकाल बीती गयो तेमा जे पुण्य पाप ना भाव थया तेना प्रत्ययनु ममत्व छोड़े। ये अभी मैंने जो बात बताई ना, ये इसलिए कि ते भाव हूँ नहीं, हूँ तो ज्ञानानंद सहजानंद प्रभु छू एम जानी, तेमा अंतरलीन रमे, यानी वो स्वरूप में जो रमणता है उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। अब आगे, भविष्यना कर्म न करवानी प्रतिज्ञा करवी एनु नाम प्रत्याख्यान। कर्म न करवानी यानी भाव कर्म न करवानी, ये लेना हो पचकान छे, दयादान व्रत भक्ति आदि शुभ भाव तथा हिंसा झूठ चोरी इत्यादि अशुभ भाव करवा नहीं, एवी प्रतिज्ञा करीने पोताना स्वरूप मा रमवु तीनु नाम प्रत्याख्यान छे। केवल बोलना ये प्रत्याख्यान नहीं है, स्वरूप में एकाग्र हो जाना, भविष्यना शुभाशुभ कर्म मने न जोइए, मारे तो एक स्वरूप मां ज ठरवू छे, एम प्रतिज्ञा करीने पोताना स्वरूप मा लीनता एटले रमणता करे तेने प्रत्याख्यान कहे छे। वर्तमान काल मा उदय मा आवेलू जे कर्म तेनु ममत्व छोड़े छे ते आत्मा आलोचना छे।
देखो यहाँ जो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना जो बात की है, तो निश्चय से आत्मा में ठहरना, आत्मा में लीन होना हो जाना ही प्रतिक्रमण है, वही प्रत्याख्यान और वही आलोचना है। फिर भी इससे पहले ऐसी पद्धति है, मुनियों के भी आचारों में ये क्रियाओं में होते हैं कि ऐसे उनके प्रतिज्ञा करके वो स्थिर हो जाते हैं। तो प्रतिज्ञा करना, ऐसी वृत्ति उठना, ये तो शुभ भाव हुआ, तो वो शुभ भाव रूप प्रतिक्रमण हुआ, मुंह से बोल दिया कि मुझे अभी ये त्याग है, या मैं अभी इससे दूर हुआ, ये मेरा मिथ्या हो जाओ, और फिर स्वरूप में गुप्त हुए। तो उससे पहले जो ये शुभ भाव हुआ उसको भी प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण और ये आलोचना कहेंगे, उस प्रतिज्ञा करने को। परंतु सच्ची आलोचना, सच्चा प्रतिक्रमण और सच्चा प्रत्याख्यान क्या है? स्वरूप में लीन। नियम सार में हमने बहुत विस्तार से देखा था इसको।
ऊपर से चौथी लाइन, निज ज्ञानानंद परमानंदमय स्वरूप ने जानी ने ते माज लीन थई जाए ते संवर छे। आलोचना छे। हवे आमा लोको ने लागे के आ तो बधी निश्चय नी वातो छे। हा, निश्चय नी वातो छे, પણ નિશ્ચય એટલે સત્યાર્થ છે. આવું નિશ્ચય ચારિત્ર હોય ત્યાં પ્રતિક્રમણા દીનો જે શુભભાવ આવે છે તેને વ્યવહાર પ્રતિક્રમણાદી કહીએ. પણ એ છે તો પુણ્યબંધનું જ કારણ, એ કાંઈ મોક્ષ માર્ગ નથી. અને આ જે નિશ્ચય પ્રતિક્રમણાદી છે તે સંવર છે, નિર્જરાનું કારણ છે અને તે મોક્ષનો મારક છે. આ સમ્યક દર્શન ઉપરાંત ચારિત્રની વાત છે. સ્વસ્વરૂપમાં ઠરી જાય ત્યારે તેને પુણ્ય પાપના ભાવ છૂટી જાય તેને ચારિત્ર કહે છે. કહીએ દેખો, યહાં તીન બાત એક સાથ મેં હોતી હૈ ના, ક્યા ક્યા હો રહા હૈ? સ્વરૂપ મેં એકાગ્રતા, ઉસી સમય યે જો પૂર્વ મેં યા ઉસી સમય મેં જો પુણ્ય પાપ કે ભાવ હોતે વો નહીં ઉત્પન્ન હોના, ઓર સ્વરૂપ મેં એકાગ્ર હો જાના. ઇસકો સબકો એક મિલકર ચારિત્ર કહા હૈ. ક્યા ક્યા ક્યા? સ્વરૂપમાં ઠરી જાય એક બાત, ત્યારે તેને પુણ્ય પાપના ભાવ છૂટી જાય અને ત્યારે સંવર અથવા નિર્જરા થાય. એ બી સાથ મેલેના. ભૂતકાળના પુણ્ય પાપથી છૂટવું, ભવિષ્યના પુણ્ય પાપથી છૂટવું અને વર્તમાન કાળના પુણ્ય પાપના ભાવથી છૂટવું અને નિજાનંદ સ્વરૂપમાં લીન એટલે સ્થિર થવું તેને ભગવાન ચારિત્ર કહે છે. આવા સદાય આવા પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન અને આલોચના પૂર્વક વર્તતો આત્મા ચારિત્ર છે. આવા ચારિત્રનું વિધાન હવેની ગાથાઓમાં કહે છે. આવું ચારિત્ર મુનિરાજોને નિરંતર હોય છે. પંચમહાવ્રતના પરિણામ તે ચારિત્ર એમ નહીં, સ્વરૂપની રમણતા તે ચારિત્ર અને તે મુનિરાજને નિરંતર હોય છે. આવી વાત સમજાણો કાંઈ.
ऐसा जो निश्चय प्रतिक्रमण है उसको और एक शब्द हमने सुना था, उसको क्या कहा था शास्त्र में? एक है व्यवहार प्रतिक्रमण और एक है निश्चय प्रतिक्रमण. नहीं याद? हाँ, अप्रतिक्रमण. देखो अप्रतिक्रमण दो है, एक जो प्रतिक्रमण भी नहीं करता, शुभ भाव रूप भी प्रतिक्रमण नहीं करता, ऐसा अप्रतिक्रमण वाला जीव, हाँ जो पाप में ही अभी, हाँ, और जो शुभ भाव रूप प्रतिक्रमण करता है कि मैंने ऐसा ऐसा पाप किया वो मिथ्या हो जा, ये तो शुभ भाव हुआ. और उसको भी छोड़कर जो आत्मा में लीन है उसको कहा था तीसरी भूमिका का प्रतिक्रमण, हाँ त्रिजीव, वो उसको अप्रतिक्रमण कहा था. जो निश्चय में प्रतिक्रमण है उसको त्रिजी भूमि नो प्रतिक्रमण, ऐसा कुछ शब्द आया था ना, उसको अप्रतिक्रमण कहा. जो निश्चय प्रतिक्रमण है उसको अप्रतिक्रमण कहा था. हाँ, यानी जो व्यवहार प्रतिक्रमण जो शुभ राग रूप है उसकी अपेक्षा निश्चय प्रतिक्रमण को अप्रतिक्रमण कहा था. पहले हम कहाँ क्या आई थी बात, उसको थोड़ा याद करेंगे ना. हाँ, अभी यहाँ हम 383 से 386 तक की गाथाएं, चार गाथाएं, यही प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना की बात यहाँ होगी.
ये तो अभी उन्होंने इंट्रोडक्शन पहले बताई है, जो बात आगे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया था.
टीकाकार मुनिराजों की ऐसी स्पेशलिटी होती है, ऐसी विशेषता कि अभी उन्होंने कलश लिखा तो आगे आने वाला विषय क्या है उसकी सूचना उसमें दी जाती है. अब हम गाथाएं पढ़ेंगे. कमम जम पूवकयम सुहासुमणेय विथर विशेषम तत्तोणीयत्तदेयप्पयम तुजोसो पडीकमणम कमम जम सुहम सुहम जम्यभावं निबज्ज दिवविसम तत्तोणीयत्तदेयो सोपच्चखानं भवदीचेदा जं सुहमसुहमुदिन्नं संपडियाणेय विथर विशेषं तं दोषं जोचेददि सो खलु आलोयणं चेदा निच्चं पच्चखानं कुवदि निच्चं पडिकमदि जोय
नित्यम आलोचे यदि सो हि चरितम हवदि चेदा
कर्म यत् पूर्वकृतम्
मा शुभमनेक विस्तर विशेषम् तस्मान् निवर्तयत्या मानं तु
यस्प्रतिक्रमणम्
कर्म यत् शुभमशुभम् यस्मिंश्च भावे बध्यते भविष्यत् तस्मान् निवर्तते यः स प्रत्याख्यानं भवति चेतयिता यत् शुभमशुभमुदीर्णम् सम्प्रति चानेकविस्तरविशेषम् तं दोषं यः चेतयते
स खल्वालोचनं
चेतयिता नित्यं प्रत्याख्यानं करोति नित्यं प्रतिक्रामति यश्च नित्यमालोचयति स खलु चरित्रं भवति चेतयिता शुभने अशुभ अनेकविध पूर्वे करेलु कर्मजे तेथि निवर्ते आत्मनेते आत्मा प्रतिक्रमण छे शुभने अशुभ भावी कर्मजे भाव बंधाय छे तेथि निवर्तन जे करे ते आत्मा पच खाण छे शुभने अशुभ अनेक विध छे वर्तमाने उदित जे ते दोषने जे चेत तो ते जीव आलोचन करे पच खान नित्य करे अने प्रतिक्रमण जे नित्य करे आलोचनाते आत्मा चारित्र चे।
देखो यहाँ संस्कृत में करेक्शन है 384 में पहली लाइन कर्म या छुभ करना छ के नीचे उकार चाहिए शुभ का यत शुभ त के आगे श आने से छ होता है और शु का छु हुआ वैसे ही दूसरी लाइन में तस्मान
385 में
निवर्तते वो ब हुआ है वो व चाहिए निवर्तते चाहिए
और उसके नीचे भी
और 385 में भी यत शुभम अशुभम वहां भी उकार रह गया है। देखो यहाँ क्या हमने अभी जो गुजराती में पढ़ा है उसको पहले देखते हैं। पहले हमने देखा था देखो जो पुण्य रूप है वो आत्मा ही पुण्य है आत्मा को ही पाप कहा था आत्मा को ही क्रोध कहा था जो क्रोध रूप परिणमता है वो आत्मा क्रोध है जो पाप रूप परिणमता है वो आत्मा पाप है पापा ऐसा आया था ना तो हाँ आजकल के सारे मम्मी पापा यहाँ क्या कहते हैं अभी उनसे जो निवर्तते है ऐसे आत्मा को ही प्रतिक्रमण कहा वो करने वाले को आत्मा को शुभ कहा था आत्मा को अशुभ कहा था अभी उससे निवर्तने वाले को अभी जो पूर्व किए हुए कर्मों से जो निवर्तता है उस आत्मा को प्रतिक्रमण कहा भविष्य में होने वाले से जो निवर्तता है उस आत्मा को प्रत्याख्यान कहा और वर्तमान के जो शुभाशुभ राग है उससे जो निवर्तन है वो उस आत्मा को आलोचना का आत्मा में ये घटित किया है। अब हम ये तो बीच वाली जो
लाइन में पढ़ना चाहिए
हाँ पहले मथाड़ू
पढ़ ले
पढ़ते हैं अतीत कर्म प्रत्यय ममत्व छोड़े ते आत्मा प्रतिक्रमण छे अनागत कर्म न करवानी प्रतिज्ञा करे अर्थात जे भावों थी आगामी कर्म बंधाए ते भावों नू ममत्व छोड़े ते आत्मा प्रत्याख्यान छे अने उदय मां आवेला वर्तमान कर्म नु एटले ये तो भाव की बात है ना यहाँ पर મમત્વ છોડે તે આત્મા આલોચના છે. સદાય સદાય કહા હર હર સમય કી બાત હૈ, યે કેવલ મુંહ સે બોલને કી બાત નહીં હૈ, હા કોઈ વિશિષ્ટ ક્રિયા કી બાત નહીં હૈ. વો હર સમય ઉનકે રાગ સે ભિન્નતા વર્તતી હૈ, ભૂતકાલ કે હો, વર્તમાન કાલ કે હો યા આગામી હો. તો એસે કહેતે કે સદાય આવા પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન અને આલોચના પૂર્વક વર્તતો આત્મા ચારિત્ર છે. આત્મા હિ ચારિત્ર હૈ. આવું ચારિત્રનું વિધાન હવેની ગાથાઓમાં કહે છે, જો હમને પઢ લિયા હૈ. અભી હમ ગાથાઓ કા અર્થ દેખતે હૈ પૃષ્ઠ સંખ્યા 73 પર, 73 પર. પૂર્વકૃતમ એટલે પૂર્વે કરેલું, યત જે અનેક વિસ્તર વિશેષમ, ઇસમે ભી આયા થા ના પ્રાકૃત મેં, સુહાસુહમ અણેય વિથર વિશેષમ, અનેક પ્રકારના વિસ્તાર વાળું. વિશેષમ મીન્સ કે અનેક અલગ અલગ વિશેષતા સહિત જો હૈ, અનેક પ્રકાર સે જો વિસ્તરિત હૈ, યાની જીતને અલગ અલગ પ્રકાર કે ભાવ હૈ ઉસકી બાત ચલે. અનેક પ્રકાર કે શુભાશુભ ભાવ ઉસકો કહા હૈ, અનેક પ્રકારના વિસ્તાર વાળું. શુભાશુભમ કર્મ જ્ઞાનાવરણીયાદી શુભાશુભ કર્મ તસ્માત તેનાથી યહ એટલે જે આત્મા, આત્માનમ તુ પોતાને નિવર્તયતી નિવર્તાવે છે. નિવર્તાને એને ક્યાં નીચે દેખો ફૂટનોટ મેં નિવર્તા વો તા કે ઉપર રફાર ચાહીએ, પાછા વાળવું, અટકાવવું, દૂર રાખવું. કે શુભાશુભ કર્મથી આ જે આત્મા પોતાને નિવર્તાવે છે તે આત્મા પ્રતિક્રમણમ પ્રતિક્રમણ છે. અબ દૂસરી ગાથા, ભવિષ્ય એટલે ભવિષ્યકાળનું, યત જે શુભમ અશુભમ કર્મ શુભ અશુભ કર્મ યસ્મિન ભાવે છે તે જે ભાવમાં બધ્ય તે જ બંધાય છે. એને શુભ અશુભ કર્મ જિન ભાવોનસે બનતે હૈ ઉન ભાવોનસે આત્મા કો અલગ. તસ્માત તે ભાવથી યહ તે જે આત્મા નિવર્તતે નિવર્તે છે, સહચેતયતા તે આત્મા પ્રત્યાખ્યાનમ ભવતી પ્રત્યાખ્યાન છે. પહેલે નિવર્તયતી અવર નિવર્તતે, અચ્છા. સંપ્રતિ ચ વર્તમાન કાળે ઉદીર્ણ, ઉદીર્ણમ હૈ ને, ઉદીર્ણ રફાર નહીં દીખ રહા હૈ, ઉદીર્ણમ ઉદયમાં આવેલું, યત એટલે જે અનેક વિસ્તર વિશેષમ અનેક પ્રકારના વિસ્તાર વાળું, શુભમ અશુભમ શુભ અશુભ કર્મ તમ દોષમ તે દોષને યહ એટલે જે આત્મા ચેતયતે ચેતે છે અનુભવે છે, જ્ઞાતા ભાવે જાણી લે છે. અનુભવ કરના ને વેદન કરના ઉસ રૂપ હોના વો બાત નહીં હૈ, જ્ઞાતા દૃષ્ટા ઉસકો જાનના બસ ઇતની બાત હૈ. અર્થાત તેનું સ્વામિત્વ કર્તાપણું છોડે છે. સચેતયતા તે આત્મા ખલુ ખરેખર આલોચનમ આલોચના છે. પહેલે ભી હમને કલશ મેં ભી દેખા થા ઓર યહાં ભી અભી હમ દેખ રહે હૈ. યહ એટલે જે નિત્યમ સદા પ્રત્યાખ્યાનમ કરોતી પ્રત્યાખ્યાન કરે છે, નિત્યમ પ્રતિક્રામતી ચ સદા પ્રતિક્રમણ કરે છે, અને નિત્યમ આલોચેતી સદા આલોચના કરે છે. સહ ચેતયતા તે આત્મા ખલુ એટલે ખરેખર ચરિત્રમ ભવતી ચારિત્ર છે. વહ આત્મા હિ ચારિત્ર હૈ. પહેલે કહા થા આત્મા હિ પ્રતિક્રમણ હૈ, આત્મા હિ પ્રત્યાખ્યાન હૈ, આત્મા હિ આલોચના હૈ. અબ જિનકે યે સદૈવ વર્તતે એસે આત્મા હિ ચારિત્ર હૈ. ટીકા, જે આત્મા પુદ્ગલ કર્મના વિપાકથી એટલે ઉદયથી થતા ભાવોથી, ક્યાં કહેતે હૈ, ભાવોનસે હિ પ્રતિક્રમણ કરના હૈ, પરંતુ ઉસમે નિમિત્ત કિસકો લિયા, પુદ્ગલ કર્મ. તો પુદ્ગલ કર્મના વિપાક, વિપાક કિસકો કહેતે હૈ, मालूम नहीं, सब विपाक अविपाक। हाँ, विपाक किसको कहना है इसमें बहन? हाँ, अब क्या कहते? उदय विपाक होना ही नहीं, उसका भी रस मिलना, पक गए ना वो, अभी पाक हुआ, तैयार हुआ फल, फल फल कब मिलता है? जब उदय में आते हैं। यहाँ लिखा है ना, देखा, पूर्व कर्मना विपाक थी इतने उदय थी, उसका निमित्तपना कब बनेगा? जब उदय में आएंगे। और ये कौन से कर्म? पुद्गल कर्म, जड़ कर्म, ज्ञानावरणादि कर्मों की बात है। तो कहते जे आत्मा पुद्गल कर्मना विपाक थी थता भावो थी पोताने निवर्तावे। ये कर्म से नहीं, जड़ कर्म से निवर्तावे ऐसा नहीं कहा, भाव कर्म की ही बात है, परंतु वो भाव कर्म यानी औदयिक भाव की बात यहाँ मुख्यता से लेने, कि ये भाव कैसे है कि पुद्गल कर्म के उदय में होने वाले भाव है। फिर देखो, हाँ, कुछ मुझे लगा किसी ने कुछ कहा। जे आत्मा पुद्गल कर्मना विपाक थी थता भावो थी, ये विपाक से कोई भाव नहीं होते, जीव ही स्वयं करता है, परंतु यहाँ निमित्त बताना है, तो पुद्गल कर्म के उदय में होने वाले भाव ऐसा कह दिया।
यानी वो कर्मों के उदय में जुड़ता नहीं, इतना लो, पोता नहीं निवर्ता पीछे ना,
यानी उन भावों से वो अपने को भिन्न पहचानते, यानी राग का स्वामित्व नहीं है उनको। फिर पढ़ते देखो, जे आत्मा पुद्गल कर्मना विपाक थी एटले उदय थी तथा भावो थी पोताने निवर्तावे छे, ते आत्मा ते भावोना कारणभूत पूर्व कर्मणे। अभी समझ में? ये भाव तो वर्तमान में हो रहे हैं, और उसके कारणभूत कैसे? पूर्व कर्म एटले भूतकाळना कर्मणे प्रतिक्रम तो थको पोतेज प्रतिक्रमण छे। तेज आत्मा ते भावोना कार्यभूत उत्तर कर्मणे एटले भविष्यकाळना कर्मणे पचकतो थतो थको प्रत्याख्यान छे। क्या कहते हैं? अभी जे भाव है उसके कारणभूत कौन है? तो पूर्व कर्म। और अभी इन भावों के कारण क्या होगा? नए फिर आगामी कर्म बनेंगे, फिर वो भविष्य काल में उसका उदय होगा। तो इसलिए कहते कि भावना कार्यभूत उत्तर कर्म ने पचकतो थको भविष्य कालना कर्म ने पचकतो थको प्रत्याख्यान छे। अने तेज आत्मा वर्तमान कर्म विपाक ने पोता थी एटले आत्मा थी अत्यंत भेदपूर्वक अनुभव तो थको आलोचना छे। यानी यहाँ जड़ कर्म और आत्मा के भाव इन दोनों को लिया है, कर्म के निमित्त से होने वाले आत्मा के भाव उनसे ये अपनी भिन्नता जानता है। ए रीते ते आत्मा सदा प्रतिक्रमण तो अर्थात प्रतिक्रमण करतो थको सदा पचक थो एटले अर्थात प्रत्याख्यान करतो थको अने सदा आलोचतो एटले आलोचना करतो थको पूर्व कर्मना कार्यरूप अने उत्तर कर्मना कारणरूप भावोथी अत्यंत निवृत्त थयो थको। ये समझ में? इसमें अपेक्षा अलग लगाए। अभी वर्तमान के जो भाव है वो पूर्व कर्म के कार्य है, और अभी जो हो रहे हैं वो उत्तर कर्म के कारण है। देखो, पूर्व कर्मना कार्य रूप अने उत्तर कर्मना कारण रूप भावो थी अत्यंत निवृत्त थयो थको, यानी वो भाव यहाँ है अभी वर्तमान में, उन भावों से निवृत्ति हो रहे। वर्तमान कर्म विपाक ने पोता थी एटले आत्मा थी अत्यंत भेदपूर्वक अनुभव तो थको पोतामां ज एटले ज्ञान स्वभावमां ज निरंतर चरतो एटले विचरतो आचरण करतो होवाथी चारित्र छे। यानी अपने ज्ञानानंद स्वभाव में मग्न होने के कारण वो नहीं जानता वो ऐसी बात नहीं, परंतु भेदपूर्वक अनुभव तो थको ऐसा कहा, उससे भेद ज्ञान चलता है इसका। અને ચારિત્ર સ્વરૂપ વર્તતો થકો પોતાને જ્ઞાન માત્રને ચેતતો એટલે અનુભવતો હોવાથી તે આત્મા પોતે જ જ્ઞાન ચેતના છે એવો ભાવ એટલે આશય છે. વો અપને આપ કો જ્ઞાન માત્ર અનુભવ કર રહા હૈ ઓર વહાં જો રાગાદિ ઉઠતે ઉસકો ભિન્ન જાનતે હૈ. ભાવાર્થ ચારિત્રમાં પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન અને આલોચનાનું વિધાન છે. તેમાં પૂર્વે લાગેલા દોષથી આત્માને નિવર્તાવવો તે પ્રતિક્રમણ છે. ભવિષ્યમાં દોષ લગાડવાનો ત્યાગ કરવો તે પ્રત્યાખ્યાન છે અને વર્તમાન દોષથી આત્માને જુદો કરવો તે આલોચના છે. અહીં તો નિશ્ચય ચારિત્રને પ્રધાન કરીને કથન છે. ઉપર જો બાત હૈ વો તો મુનિયો કી જો નિત્ય કર્મ જો ઉનકે હોતે હૈ ઉસકી બાત વહાં બતાઈ. અબ યહાં તો નિશ્ચય ચારિત્ર કી બાત બતાની. માટે નિશ્ચયથી વિચારતા તો જે આત્મા ત્રણેય કાળના કર્મોથી પોતાને ભિન્ન જાણે છે, જાણતાય નહીં, શ્રદ્ધે છે અને અનુભવે છે, તીની વાત, તીનોય વાત, અપને આપકો જ્ઞાન માત્ર અનુભવ કિયે બિના વો ભિન્ન કૈસે અનુભવેગા, ભિન્ન કૈસે શ્રદ્ધેગા. તે આત્મા પોતે જ પ્રતિક્રમણ છે, પોતે જ પ્રત્યાખ્યાન છે અને પોતે જ આલોચના છે. એમ પ્રતિક્રમણ સ્વરૂપ, પ્રત્યાખ્યાન સ્વરૂપ અને આલોચના સ્વરૂપ આત્માનું નિરંતર અનુભવન તે જ નિશ્ચય ચારિત્ર છે. એને જ્ઞાન માત્ર આત્મા કા નિરંતર અનુભવન હિ ચારિત્ર હૈ. ઉસી કો પ્રતિક્રમણ કહા, ઉસી કો આલોચના કહા ઓર ઉસી કો પ્રત્યાખ્યાન કહા. જે આ નિશ્ચય ચારિત્ર તેજ જ્ઞાન ચેતના અર્થાત જ્ઞાનનું અનુભવન છે. અપને આપકો જ્ઞાન રૂપ હી અનુભવ ચલતા હૈ ઉસકો જ્ઞાન ચેતના કા. તેજ જ્ઞાન ચેતનાથી અર્થાત જ્ઞાનના અનુભવથી સાક્ષાત જ્ઞાન ચેતના સ્વરૂપ કેવલ જ્ઞાનમય આત્મા પ્રકટ થાય છે. અપને આપકો યહાં જ્ઞાનમય અનુભવ ચલ રહા હૈ ઓર ઉસી સે સાક્ષાત જ્ઞાન ચેતના જો કેવલ જ્ઞાન હૈ. કેવલ જ્ઞાની તો સભી સાક્ષાત જાણતે હૈ ઉસ અપેક્ષા સે યહાં સાક્ષાત જ્ઞાન ચેતના કહા. પહેલે ભી ઇસ બાત કો હમ પ્રવચન મેં પઢ કર ફિર આગે બઢેંગે.
देखिए हम पृष्ठ क्रमांक 75 बनाएंगे. यहाँ लिखते हैं 283 थी 383 थी 386 नु मथाड़ू आवो चारित्र नु विधान हवेनी गाथाओं में कहे छे. जे आत्मा उद्गल कर्मना विपाक थी क्या कह रहे हैं देखो, जे आत्मा उद्गल कर्मना विपाक थी एटले उदयती थता भावो थी पोताने निवर्तावे छे. ते आत्मा ते भावोना कारणभूत पूर्व कर्मने एटले भूतकाळना कर्मने प्रतिक्रम क्रमतो थको पोते ज प्रतिक्रमण छे. जो आई एम सिद्ध करवू छे के વર્તમાન દયાદાન વ્રત ભક્તિ ઇત્યાદિ જે પરિણામ થાય તે દોષ છે, તે આત્માની દશા નથી. યાને વો આત્માની દશા ને હાલત યાને પર્યાય નહીં હૈ, ક્યુંકે વો ઉસકા સ્વભાવ નહીં હૈ. યે બાત બતાના ચાહતે. બહુ આકરી વાત બાપુ, યે પકે નીચે એક યે કરના. પણ આ સત્યાર્થ છે શું કે છ કાયાના જીવોની રક્ષાના પરિણામ ને પાંચ મહાવ્રત પાળવાના પરિણામ થાય તે દોષ છે, ગુણ નથી. એ દોષથી ખસીને નિજ અંતર સ્વરૂપમાં જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપમાં રમે તેને ચારિત્ર કહે છે. હવે આવો વિતરાગનો અનાદિનો સનાતન ધર્મ છે. એ કભી હમને ગુરુદેવ કે સંપર્ક મેં આને કે પહેલે કભી સોચા હી નહીં થા. યાને દયા દિખાના, કોઈ મરતા હોવા જીવ ઉસકો બચાને કી કોશિશ કરના, યે ધર્મ કરના એસા માનતે થે. જાને આને વાલે કો ઉસ જમાને કા, એક આના દીવે તો કિતના દાનશૂર, एक पैसे की बात नहीं, ऐसी बात थी क्या कहा?
देखो यहाँ अभी जो टीका में पढ़ा और यहाँ जो बता रहे ना,
हाँ,
तो ये जो दया दान आदि जो कोई परिणाम हो रहे हैं, तो ये पूर्व कर्म के उदय में हो रहे हैं, और ये जो परिणाम हो रहे हैं इनके कारण भविष्य में भी कर्म बंधने वाले हैं, और जो हो रहे वे दोष है, वर्तमान के है वे है तो दोष है, कर्म के विपाक में होने वाले जीव के परिणाम है, परंतु वो जीव का दोष है, वो उसका स्वभाव नहीं है। इस तरह से तीन, अभी टीका में यही पढ़ा हमने, गाथा में भी यही पढ़ा है, इसको तम दोषों में ऐसा कहा था ना, निकालो 385 में, तम दोषम जो
चेत,
यानी ये प्रतिक्रमण क्यों कहा? वर्तमान में जो दया दान आदि के परिणाम हो रहे हैं, वो पूर्वकृत कर्मों के कारण उसके उदय में हो रहे हैं। वर्तमान में जो भाव हो रहे हैं, वो भविष्य के कर्मों के कारण है, और वर्तमान में जो भाव हो रहे वो दोष रूप है, वो मेरा स्वभाव नहीं। इस तरह से इन तीनों ही प्रकार से उससे निवृत्त होते हैं, ये बात यहाँ बता रहे। आएगी बात अभी और, ये टीका में खास विशेष उन्होंने ये बात इसका गौर किया कि पुद्गल कर्मों के साथ इसका रिलेशन बताया।
यहाँ तो चारित्र किसको कहना, इस बात की विशेष मतलब चर्चा हुई है, और यहाँ कह रहे हैं कि ये दोष थी खसी ने, यानी ऐसे शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम, यहाँ तो शुभ परिणाम की विशेष बात कर रहे हैं कि ये दोष छे केम के मारो स्वभाव नथी एटले गुण नथी एम के छे, एटले एनाथी मने कई फायदो थाय एवी बात नथी, ए तो दोष स्वरूप छे, केम के जे आश्रव छे ए तो दुख छे, दुख नु कारण छे, तो के ए दोष थी खसी ने निज अंतर स्वरूप मा, एटले केवु छे ते स्वरूप ज्ञान आनंद स्वरूप एमा रमे, एटले एमा स्थिरता एकाग्रता है, तेने चारित्र कहिए। हवे आवो वितरागनो अनादिनो सनातन धर्म छे, भगवान आत्मा अनंत दर्शन, और ये सब में अनंत लगा लेना, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत स्वच्छता, अनंत प्रकाश ने वितरागना स्वभाव थी अंदर पूरन भरेलो प्रभु छे। अंदर पूरन स्वभाव न भरियो होय तो अरहंत अरिहंत आने सिद्ध दशा प्रकटे क्या थी, पन एने आ बेसवू कठन पड़े छे, अंदर विश्वास आवो ए दुर्लभ चीज छे, अशक्य नथी। क्या कहा इसमें, क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह का विश्वास होना ये अशक्य नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है, क्या कहा, दुर्लभ चीज छे, उसको प्राप्त करना कठिन है, बिल्कुल होगा ही नहीं ऐसी बात नहीं है कह रहे हैं। क्या कहा कि ऐसा जो मेरा पूर्ण स्वभाव है, अनंत अनंत गुणों से परिपूर्ण भरा हुआ है, और वो स्वभाव पर्याय से युक्त है, तो वो ऐसा पूर्ण स्वभाव है उसका विश्वास होना कठिन है कहते हैं, पन अशक्य नहीं है, पन सम्यक दर्शन थमू ए दुर्लभ तो अब हाँ तो पढ़ने तो दो मुझे, ऐसा है, कोई बात नहीं यहाँ क्या कह रहे हैं, अशक्य नथी पन सम्यक दर्शन थमू ते दुर्लभ तो अवश्य छे, केम के हूँ कौन छू एनो एने कोई दी विचार ज करियो नथी, इस अपेक्षा से उसको दुर्लभ कहा है। देखो सम्यक दर्शन होना इसको भी दो प्रकार से कहा जाता है, ये दुर्लभ है यहाँ ऐसा बता रहे, क्यों के उस रीति से उसने कभी प्रेत नहीं किए, ये काम भोग बंध की कथा तो जीव ने अनेकों बार सुनी है, समझी है, समझाई है और अनुभव भी किया है, पर एक अपने स्वरूप को आज तक उसने नहीं जाना है, इसलिए उसको दुर्लभ कह रहे हैं। और एक अपेक्षा ये लगाते वो तो बहुत सुलभ है, क्योंकि वो अपना स्वभाव ही है ना, और स्वभाव रूप परिणाम ना, ये दूसरे की कोई हाथ में बात नहीं है, अपने स्वयं की कैपेसिटी की बात है। हम उसको, और आज तक एक नहीं दो ने अनंत जीवों ने वो प्राप्त किए हैं, हमारे तो अनंत सिद्ध ही है अभी विद्यमान। तो अगर इतनी दुर्लभ बात होती तो किसी को भी नहीं मिलती थी, लेकिन बहुत आसान है, सुलभ है। दोनों ही अपेक्षा लगती, जहां जो योग्य होगा वो लेना। यहां तो कह रहे कि वो बहुत दुर्लभ है, क्यों के केम के हूं कौन छू, अपना स्वरूप क्या है, ये समझने की जानने की कोशिश जीव ने की नहीं है। कहते हैं हूं के हूं कौन छू, एने एनो एने कोई दी विचार ज करियो नथी। आई कहे छे टाइम थी गयो एम के छे, चलो ये कर लेंगे, बहुत अच्छी बात आई आज। जावानी के ज्ञान तय सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकण मो सदा देत हो। प्रेरणा मिली।